मौके के ऊपर आपके मुस्तकबिल पे भी होती है और आपकी नजर सिर्फ उस वक्त की सर्दी पर होती है।
मगर अगर मेरे माँ के ये इख्तियार में हो कि वो मुझे ऐसी जिंदगी दे सके जिसके अंदर मुझे अजियत ना हो और मुझे जो मैं हासिल करना चाहूँ वो भी मिल जाए, तो ये करेगी?
या आप मेरी और अपनी तौहीन कर रहे हैं। मैं ये जिंदगी नहीं चाहता। इंसान की हैसियत से मुझे बहुत बड़ा शरफ मिला है कि मैंने जो पाना है क्यामत में वो अपनी एफर्ट से पाना है। मैं वो जिंदगी क्यों लूं जो फरिश्तों को दे दी गई है? यही तो मेरा सबसे बड़ा शरफ है।
मैं तो फरिश्तों की बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ मैंने अपनी जो एक्शन से करना है।
यही कह रहे हैं कि खुदा को जब इल्म था तो वो अपने इल्म पर फैसला करता।
नहीं, अगर खुदा जानता तो मैंने क्या करता, तो सीधा जन्नत ठंडों में डाल देता लोगों ने जो करना था उनको।
अगर उस मौके पर आप खड़े होकर ये कहते हैं कि मुझे तो मौका नहीं मिला काम करने का, आपने क्यों अपने इल्म की बुनियाद पर फैसला किया, फिर क्या होता?
खुदा ने जैसे बड़े मौके वैसे बड़े हकूक दिए हुए इंसानों को, क्या मतलब मेरे से पूछे ना तो मुझे दुनिया में डाला था ना मैं पूछ के बाहर
निकाल कीजिएगा। जब आपको मौका ही नहीं दिया गया एक चीज का तो आपके बारे में एक मनफी फैसला कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल ठीक है कि खुदा आपको अगर जन्नत में भेज देगा तो आप नहीं पूछेंगे, अगर वो जहन्नम में भेज देता तो आप कहते हैं कि मुझे तो मौका नहीं दिया गया।
मैं तो अभी बहुत सारी बातें करता हूँ वो तो नहीं खुदा सुनते, तो खैर ऐसी कौन सी बात है खुदा ने कोई इदालत लगाई हुई इंसान के साथ?
आप जो बात भी करते हैं खुदा उसको सुनता है, इसीलिए तो आप ये बात कर रहे हैं और हम आपका जवाब दे रहे हैं, इसीलिए तो जवाब दे रहे हैं।
मुसलमान के घर पैदा होना मेरी किस्मत?
मुसलमान के घर पैदा होना तो खुदा का फैसला था, लेकिन आपको शऊर की उम्र को पहुंचने के बाद मुसलमान रहना है या कुछ और बनना है आपका फैसला है?
इस्लामी घराने में पैदा होगा बाहर हाल उसके ऊपर ज्यादा ये चांस होगा कि वो इस्लामी तालीमात पर अमल करे और वो जन्नत से ज्यादा करीब होगा। एक जो बंदा हिंदू घराने में पैदा होगा वो जन्नत से ज्यादा दूर होगा, क्योंकि पहले उसे कन्वर्ट होना है इस्लाम में, फिर नेक काम करने और फिर जन्नत को अटेन करना।
मेरा तो ख्याल ये है कि ज्यादा इसके जहन्नम में जाने के इम्कान है, ये इस्लाम के घराने में पैदा हुआ है, इसको शऊर नहीं इस बात का किसने क्या सीखा और क्या नहीं सीखा। जो वालदैन से पा लिया है उसके ऊपर अंधा धुंधबाजों का अमल करता है और बसा औकात ऐसा होता है कि इस गलतफहमी में मुबतला हो जाता है कि मैं तो मुसलमान हूं इसलिए मैं जिधर चाहूं चला जाऊं।
फिर वहीं कि बहरहाल उसका चांस बंदे का ज्यादा है कि वो दुरुस्त मजहबी तालीमात पर अमल करेगा आपके फहम के मुताबिक जो इस्लामी घराने में पैदा हो।
जरूरी नहीं, मैं तो देखता हूं इस वक्त मुसलमानों के घरानों में
99.99% लोग बाय बर्थ रिलीजियस होते हैं, वो कन्वर्ट नहीं होते।
मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, आप रिलीजियस किसे कहते हैं? यानी
खास मजहब के पैरोकार होते हैं।
नहीं, मजहब क्या चीज है? असल चीज तो अखलाकी उसूल है ना, जिनको मजहब दुनिया में कायम करने के लिए आया है। मुसलमानों के घराने में लोग पैदा हो रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, बददियानती कर रहे हैं, गबन कर रहे हैं, लोगों का माल खा रहे हैं, मिलावट कर रहे हैं, दवा तक खालिस देने के लिए तैयार नहीं है। आप मजहब कहते किसको?
हतमी तौर पर उन्होंने जन्नत में जाना है।
मुझे नहीं मालूम, जन्नत और जहन्नम के फैसले ना आपको करने चाहिए ना मुझे करने चाहिए। देखिए बात यह है कि अगर किसी यहूदी ने जानते बूझते किसी हक का इनकार नहीं किया, किसी मसीही ने जानते बूझते किसी हक का इनकार नहीं किया, तो वो क्यों जन्नत में नहीं जाएगा? ये बात तो कुरान मजीद ने
सर, जानते बूझते कोई हक का इनकार नहीं।
आपका ख्याल है, मैं तो मुसलमानों के अंदर लोगों को जानता हूँ, उनके तासुबात, उनके मफादात, उनकी दुनिया के साथ वाबस्ती।
खुदा ने पैदा किया उनके अंदर तासुबात मफादात?
बिल्कुल भी नहीं। खुदा ने तो इन तासुबात के मुकाबले में उनको बहुत बड़ा इरादा दिया था, उसको इस्तेमाल करें तो उसके बाद वो हमाला को सर कर सकते हैं। खुदा ने उनके साथ कोई जुर्म नहीं किया। और हजरत खिजर के जिस वाक्य की आपने इब्तदा में मिसाल दी थी उसमें खुदा की मुदाखलत है, यानी ये बात कि कौन सा मामला इज्तिमाई हिकमत के खिलाफ हो जाएगा उसमें खुदा मुदाखलत करता है।
8 साल बच्चे को इसलिए मार दिया गया कि वो बड़े होकर अपने वालदैन को दुख देगा। हिटलर को नहीं मारा गया,
रोज बच्चे
हलाकू खान को नहीं मारा गया, चंगेज खान को नहीं मारा गया।
मेरी गुजारिश सुन लीजिए, हिटलर और हलाकू खान को क्यों जिंदा रखा गया? दुनिया की एक इम्तहान के लिए बनाई गई है। अगर अल्लाह ताला ने
बार बार हम इस बात पे एम्फेसाइज कर रहे हैं और आप इल्मुल कलाम का सहारा निकल कर लेकर उसे दाएं बाएं हो जाते हैं कि दुनिया एक इम्तहान है, माना तस्लीम, लेकिन ये एक ऐसा इम्तहान है जिसमें हम अपनी मर्जी से आए ही नहीं, हमने फॉर्म नहीं जमा कराया कि हम इस दुनिया में आकर बैठ जाएंगे, और ये एक ऐसा इम्तहान है जिसका रिजल्ट एग्जामिनर को पहले से मालूम है।
देखिए मेरी गुजारिश सुन लें,
और ये एक ऐसा इम्तहान है जिसमें हर जो एग्जामिनी है जिसका इम्तहान लिया जा रहा है उसकी सलाहियतें भी एक जैसी नहीं है।
हर आदमी का इम्तहान उसकी सलाहियत के लिहाज से दिया जा रहा है। मैं जब शऊर को पहुंचता हूं तो मैं इस दुनिया को एक्सेप्ट करता हूं, इससे मोहब्बत करता हूं, इसे जाने के लिए तैयार नहीं होता। ये अल्लाह ताला के फैसले की तस्वीर है जो मेरी तरफ से हो जाती है। ये तो पांव लटकाए होते हैं कब्र में, उस वक्त भी कोई यहां से जाना नहीं चाहता। इस दुनिया के अंदर अगर इंसानियत वाकई खुदा के फैसले को मानने के लिए तैयार न होती तो सारी खुदकुशी कर लेती।
अगर खुदा कवियो कादर है, ओमनी पोर्टेंट, ओमनी प्रेजेंट, ऑल नोइंग, ऑल पावरफुल, तो क्या उसका इल्म होना, उसको इल्म होना, उसके लिए जानना, वो चीज हरफे आखिर नहीं होती क्या?
उसका इल्म ही यही है कि आप ये काम अपने इख्तियार से कर रहे हैं।
जब उसने
उसका इल्म हरफे आखिर है, लेकिन वो इल्म है क्या? वही है कि आप ये काम अपने इख्तियार से कर रहे हैं।
अगर किसी ऑल नोइंग पावरफुल फोर्स के अगर उसका इल्म ये है,
ऑल नोइंग है, लेकिन क्या जानता है? ये जानता है कि आप इख्तियार से ये काम कर रहे हैं। देखिए बात यह है कि मैं जानता क्या हूं, मैं ये जानता हूं कि आप अपने इख्तियार से अपने इरादे से उसको सही या गलत इस्तेमाल करके ये काम करेंगे, तो मेरा इल्म है ही यही, मेरा इल्म तो बिल्कुल हतमी है, लेकिन है क्या मेरे पूरे इल्म की स्टेटमेंट बयान की जाए।
बहस का नतीजा आप ये निकाल रहे हैं कि खुदा का इल्म ऑल नोइंग है, वो माजी हाल मुस्तकबिल सबका इहाता करता है, लेकिन खुदा का एब्सोल्यूट फाइनल इल्म ये है कि इंसान अपने इरादे से ये करेगा,
फलां मामला इरादे से करेगा, फलां बगैर इरादे से।
यानी इसका मतलब है कि फाइनल जजमेंट डे, जिस दिन सब लोग दाखिल जन्नत या दोजख होंगे, उसका फैसला पहले से हो चुका है।
नहीं, उसका फैसला पहले से नहीं हुआ, उसका इल्म पहले से मौजूद है, फैसला तो उस दिन होगा। फैसले की बुनियाद आपका इख्तियार, आपका इरादा, अल्लाह का इमाम हुज्जत।
मैं तस्लीम करता हूं कि मैं आपकी सारी बात आज समझने से कासिर रहा, मैंने बड़ी ईमानदारी से आपसे सवाल किए। आखिरी सवाल, मुतकल्लमीन जो हैं तकदीर की दो अकसाम बयान करते हैं, तकदीर मौलिक और तकदीर मुबर्रम। तकदीर मौलिक या तकदीर उला के मुतल्लिक वो कहा जाता है कि वो दुआ से बदल जाती है, और तकदीर मुबर्रम या तकदीर मौला दुआ से नहीं बदलती, वो हतमी है। तो क्या इन अकसाम की वाकई कोई दीन में असल हैसियत है?
मुतकल्लमीन अपनी बात की खुद वजाहत करें, मैं तो आपको कुरान का बता सकता हूं कि आपकी बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिनको अल्लाह ने आपके मांगने पर मुतल्लक रखा होता है, यानी वो तय ही ये किया होता है कि आप ये चीज मांगे तो दे देंगे, नहीं मांगेंगे तो नहीं देंगे।
क्या खुदा को पता है अपने बारे में कि उसने मेरे बारे में क्यामत के रोज क्या फैसला करना है?
खुदा हर चीज से वाकिफ है, ये उसूल बात।
अगर अब पता है खुदा के इल्म के हुदूद क्या करने हैं, तो उसका मतलब उसने वो फैसले कर चुका है। वो
उसने क्या फैसले करने हैं, वो
खुदा को अपने खुद के बारे में पता है कि उसने किस
बुनियाद पे फैसले करने हैं? एक जज फैसला करता है बगैर मुल्ज़िम को सुने हुए, बगैर वकील को सुने हुए। क्या ऐसे खुदा अपने फैसले से वाकिफ है, लेकिन वो ये जानता है कि ये फैसला वो इंसाफ पर करेगा, ये फैसला आपके इरादे पर करेगा, ये आपके इख्तियार के सही इस्तेमाल या गलत इस्तेमाल पर करेगा। आप खुदा के फैसले को पूरा पढ़िए पहले, आप तो फैसले का आखिरी हिस्सा सुना रहे हैं, पहले खुदा का पूरा फैसला पढ़िए।
फैसले से पहले से वाकिफ है, और वो फिर जिरह का मौका देता है वकील को और मुद्दई को, तो जिरह तो बेमानी है।
क्यों बेमानी है?
क्योंकि फैसला उसके पास पहले से मौजूद।
किस चीज का फैसला?
वो इस मुकदमे का क्या फैसला?
नहीं, उसके पास ये इल्म पूरा मौजूद है कि ये आदमी ये काम करेगा, ये जरा की जाएगी, उसका जवाब ये देगा, ये पूरा इल्म उसके पास है। आप खुदा के इल्म को अपने अमल से मुतल्लक कैसे करना?
इतनी सादगी, इतनी नुदरत के साथ तकदीर और तदबीर का एक मसले का हल पेश कर दिया, जिस पर मुसलमान पिछले 1400 सालों से लड़ रहे हैं।
तो क्या मुसलमान लड़ रहे हैं?
तो इसका मतलब है मुसलमान उलमा आपकी उस इंटरप्रिटेशन से जो आप बयान कर रहे हैं इत्तफाक नहीं करते।
देखिए बात यह, मुसलमान मुझसे इत्तफाक करे, मुसलमान मुझसे इख्तलाफ करे, मैं तो अल्लाह की किताब में जो बात बयान की गई है और जो इल्म अकल के आखिरी मैार पर पूरी उतरती है,
आपकी इल्म अकल के आखिरी मैार पर
मैं ये कहता हूँ। आप बाकी दुनिया का निजाम जिस उसूल पर चला रहे हैं बता दें मुझे, आप मुझे ये बताएं कि आप किसी की शक्ल सूरत पर उसको सजा देते हैं, आप किसी के पैदा होने पर उसको सजा देते हैं? अगर कोई आदमी अखलाकी उसूलों
के अल्फाज तो वाज़ेह तौर पर कहते हैं कि उसका अच्छा या बुरा होना पहले से लिख दिया गया।
आप देखिए, आपने उन अल्फाज को जो सूरत दे दी है उसको कुरान मजीद की रोशनी में देखिए, वो खुदा के इल्म का बयान है और ये बात कुरान मजीद में कही गई है। इल्म के बयान को बाज़ औक़ात इस तरह बाज रावी ताबीर कर देते हैं, इसी वजह से ये जरूरी हुआ कि हर रवायत को कुरान की रोशनी में देखा।
हामिद साहब, यहाँ पे माज की गुफ्तगू को समेटते हैं। नाज़रीन, मसला तकदीर पर मुसलमानों के माबैन हमेशा से दो बड़ी आर आ रही हैं। अहले जबर के नजदीक इंसान सिर्फ मजबूरे महज है जिसका हर अम लोहे तकदीर पर पहले से लिख दिया गया है, मगर अहले कदर के नजदीक इंसान इरादा और इख्तियार लेकर पैदा हुआ है ताकि रोजे क्यामत आमाल की बुनियाद पर उसे दाखिले जन्नत या दाखिले जहन्नुम किया जा सके। एक और राय यह भी है, जैसा कि गांधी साहब ने फरमाया कि इंसान महदूद इरादा और इख्तियार लेकर पैदा हुआ है, मगर इन तमाम आरा के बावजूद ये भी एक हकीकत है कि मजहब ने अपने बुनियादी माखजों में तकदीर के मुतल सेर हासिल बहस नहीं की और तकदीर और तदबीर दोनों में से भी किसी एक की मुकम्मल तौर पर नफी नहीं की। लिहाजा इसीलिए हर मुमकिन तदबीर को अपनाते हुए बाकी को दुआ और तकदीर पर छोड़ देना ही हमेशा से मजहब के अहले खिर का शेवा रहा है। इस उम्मीद के साथ कि आपका आने वाला कल आपके गुजरे हुए कल से कहीं बेहतर हो, अपने मेजबान अवैस इकबाल और प्रोग्राम गांधी की पूरी टीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए जियो न्यूज़।